नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणि व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्र प्रहर्त्र त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चये पदानां नियन्त्रे त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमाम सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम सबको नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है, पिछले चार रविवार से हम सुनते आ रहे थे कर्म के अलग अलग एस्पेक्ट। पिछले दो बार हमने सुना कर्म और उसके फल के साथ जो रिलेशनशिप है, जिसको हम कर्म सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ कर्म, उसमें किस तरह क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। हम जैसा भी हैं वो हमारे कर्मों के कारण, वो अभी के या पुराने कर्मों के कारण है। कोई भी कर्म को समझने के लिए आप और एक एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, वो है पुनर्जन्म। क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या मरने के बाद कोई दूसरा जन्म मिलता है? सबसे पहली बात, क्या आत्मा होती है? मरने के बाद फिर क्या होता है? तो जब तक इन सब का आंसर हमें ना मिले, तो जो लॉ ऑफ कर्म, जो कर्म सिद्धांत है, वो अपने आप में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल तो सारे इस जीवन में हमें मिलता हुआ नहीं दिखता। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पुनर्जन्म क्या चीज है, होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक चक्र है, हमारे जीवन को का जो चक्र है। हम कुछ काम करते हैं और इस काम के कारण जो भी संस्कार बनते हैं, सबकॉन्शियस मेमोरीज, संचित के रूप में, वो संचित में से कुछ इस जीवन में हमें भोगने को मिलता है, पर बहुत कुछ भोगने को नहीं मिलता, तो बेकार तो जाएगा नहीं। फिर अगला जन्म मिलता है, जन्म लेते हैं, फिर काम करते हैं, इस तरह चक्र चलता रहता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, नाधर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरिव शनैरावर्त्यमानस्तु कर्तृर्मूलानि कृन्तते। मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 172वां श्लोक है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, यहां अधर्म की बात की, गलत की बात कही, तो गलत सही दोनों है, तो जरूरी नहीं कि वो इसी जीवन में ही आपको फल मिल जाए, वो धीरे धीरे फल देता है। बोले कैसे? बोले वो गाय के तरह, जैसे गाय से दूध लेना हो तो आप उसे घास खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि घास खाते ही तुरंत गाय दूध दे देती है। घास खाने के बाद कुछ समय के बाद गाय के अंदर दूध बनती है और जिस दूध को आप लेते हैं। इस श्लोक में गौ का दूसरा भी अर्थ है पृथ्वी, तो कुछ लोग पृथ्वी का भी अर्थ करते हैं। जैसे पृथ्वी जो फल देती है अचानक नहीं देती है, आप धरती पर कुछ उगाते हो, बीज डालते हो, तो फल देते समय टाइम लग जाता है। इसलिए कर्म हमारे हिसाब से नहीं, वो आराम से काम करता है, फल देता है। और जो गलत काम करता है वो उसको जड़ के साथ उखाड़ के फेंकता है, और जो अच्छा काम करता है उसको बहुत सारा फल मिलता है। तो ये कर्म तो मिल का फल तो मिलता है धीरे धीरे, अब इस जीवन में मिले या अगले जीवन में मिले, तो पुनर्जन्म के साथ क्या संबंध है? मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से उसके दिमाग में ये विचार आता रहता है, क्या यही एक जीवन है कि इसके बाद भी कुछ है? अब ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछते, लाखों साल पहले से पूछते आ रहे। कठोपनिषद का, कठोपनिषद में एक आख्यायिका आती है, बालक नचिकेता 8 साल का बच्चा है, यमराज जो मृत्यु का एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है यम, तो आचार्य यम के पास जाता है और यही सवाल पूछता है, क्या ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्य के, ये जो मरने के बाद ये प्रश्न आता है, विचार आता है। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी वो रहता है, वो जो आत्मा नायमस्ति इति चैके, और कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं रहता है। एतद् विद्या मनुशिष्ट त्वयाहम्, मुझे आपसे वही सीखना है क्योंकि तुम मृत्यु हो, तुम हमारे जीवन और मृत्यु के पार क्या होता है, तुम दोनों के बीच का ब्रिज कौन होता है? हमारा मौत, मौत ही अकेला जान सकता है ना कि मौत के बाद आत्मा कहां जाती है और उससे पहले क्या था। तो मौत को ही यहां आचार्य के रूप में प्रकट किया कठ ऋषि ने, और नचिकेता बालक से पूछवाया कि तुम मुझे यही ज्ञान दे दो, मेरे वराणामेश वरस तृतीय, यही मेरा तीसरा वर है। अर्थात ये क्वेश्चन, ये प्रश्न तो अनंत काल से, जब से मानव पैदा हुआ है तब से वो पूछता रहता है कि क्या इस जीवन के बाद कुछ होता है या नहीं होता है। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी दूसरे कल्चर में, रिलीजियन में, फिलॉसफी में इसके बारे में कोई, इवन आज के मॉडर्न साइंस में भी इसके लिए कोई परफेक्ट आंसर नहीं दिया है। जितना हमारे वैदिक साहित्य के साहित्य में हमारे ऋषि मुनियों ने, प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने, थिंकर ऋषियों ने, ज्ञानियों ने जो सल्यूशन इस सिचुएशन का दिया, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, वो उतना ही लॉजिकल है, उतना ही रैशनल है और उतना ही यूनिवर्सियल है। सवाल है कोई मानता है नहीं मानता, वो अलग भी है, मानने न मानने के लिए बहुत सारे रीजन है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र कहता है तदेव सक्त सहकर्मणे लिंगम मनो यत्र निशक्तमस्य प्राप्यांतम कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् तस्मान् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणि इति तु कामयमानः अथा कामयमानः यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। तो मंत्र कहता है जो लोग कर्मों से अटैच्ड हैं, असक्त होकर कर्म करते हैं, उनको फल मिलता रहता है। इवन यहां तक कि मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर और मन के रूप में आत्मा के साथ हो जाता है। सूक्ष्म शरीर और मन के माध्यम से वो आपका कर्म संस्कार जाता है और आपके अगले जन्म के लिए आपको बाध्य करता है, और व्यक्ति फिर नया जन्म लेकर के दोबारा कर्म करता है। और जो लोग निरासक्त हो गए जीवन के प्रति, जिनका डिटैचमेंट की सेंस आ गया, या जिनके अंदर कोई अब इच्छा रही नहीं, या जो बिना इच्छा के ही काम करते हैं, निसक्त भाव से काम करते हैं, या जो ऐसा रियलाइज करते हैं कि मेरी कामनाएं पूरी हो गई, अथवा जो खुद में ही खुद को एंजॉय करने लगते हैं, उन सबको मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं मिलता, क्योंकि अब उनके लिए कोई कर्म बसता नहीं है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का विचार है। फिर ये पुनर्जन्म होता क्या है? बहुत सारे प्रश्न आते लोग आपके घर में, आप देखेंगे चार बच्चे हैं, चारों बच्चों के एटीट्यूड अलग अलग है। कोई गणित में बहुत अच्छा है, मैथ में अच्छा है, तो कोई संगीत में उसका इंटरेस्ट है। वो अलग बात है कि हमारे माँ बाप मजबूर करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़वा देते हैं, पर बच्चे की जो अंदर प्रतिभा है, जो उसकी रुचि है, वो एक पर्टिकुलर वे में होता है, और चारों बच्चों के अलग अलग होते हैं। चारों बच्चों के नेचर अलग अलग है, कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत कूल एंड काम है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत तो चंचल है, कोई बहुत हिंसक प्रवृत्ति का है, तो कोई बहुत दयावान है। ऐसा क्यों होता है? एक ही तरह के पेरेंट्स हैं, एक ही तरह के टीचिंग है, एक ही तरह का स्कूल है, एक ही तरह का सराउंडिंग है, पर बच्चे अलग अलग हैं। दूसरा सवाल है, क्यों इंसान गरीब घर में पैदा होता है, कोई धनी घर में पैदा होता है? क्यों कोई पशु बन के पैदा होता है, कोई इंसान बन के पैदा होता है? क्यों किसी के अंदर कोई कमी है और कोई पूरा का पूरा है? प्रश्न का उत्तर न जानने पर लोग इधर उधर गालियां देते हैं, इसको उसको ब्लेम करते हैं, कभी ईश्वर को ब्लेम करते हैं, कभी भाग्य को ब्लेम करते हैं, प्रकृति को ब्लेम करते हैं, कभी संसार को ब्लेम करते हैं, कभी माँ, बहुत सारे तरह से ब्लेम हम करते हैं, क्योंकि उत्तर नहीं पता होता है। कोई पैदाइशी इतना धनी है, जैसे कहा जाता है मानो पैदाइशी सोने की चम्मच से पैदा हुआ, और कोई ऐसा है कि जिसके लिए प्लास्टिक चम्मच खरीदने के भी पैसा नहीं है। तो इन सब का उत्तर हमें कर्म और पुनर्जन्म के इस व्यवस्था में मिलेगा। तो पुनर्जन्म क्या है? ये एक साइकिल है, रिपीटेड साइकिल, रिपीटेड बर्थ और डेथ का साइकिल। जो भी पैदा होता है वो मरता है, और जो मरता है वो पैदा होता है, और ये कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलता रहता है। जब भी आप पैदा होते हैं, कुछ काम करते हैं, और उस कामों के संस्कार बनते हैं, वो संस्कार आपको फल देने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल गीता की भाषा में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो मरा वो पैदा होता है, और जो भी पैदा होता है वो भी मरता है। जी मैं मरना नहीं चाहता हूं, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि पैदा मत हो। जी मैं पैदा होना नहीं चाहता हूं, रास्ता है कि मत मरो। ये साइकिल है, मरना और पैदा होना। जब भी आप पैदा होते हैं, मरने के लिए तैयारी चलती रहती है। जब भी आप मरते हैं, तो पैदा होने की तैयारी चलती रहती है। ये गति है। और इस तरह मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहता है। इसको ऐसे समझिए, जो भी पैदा होता है वो मरता है, और जो मरता है वो पैदा होता है। ये पैदा होना और मरना, इसके बीच का जो स्पेस रहता है उसी स्पेस का नाम है लाइफ, जीवन। कैसा मुझे जन्म मिले, मैं क्यों आज ऐसा हूं, मैं बिल्ली बन के क्यों नहीं पैदा हुआ, हाथी बन के क्यों नहीं पैदा हुआ, बहुत धनी घर में क्यों नहीं हुआ, या गरीब घर में क्यों नहीं हुआ, मिडिल क्लास में क्यों नहीं हुआ, मैं भारत में हुआ तो क्यों हुआ, मैं अफ्रीका में क्यों नहीं हुआ, कोई अमेरिका में हुआ तो हुआ, जापान में क्यों नहीं हुआ। तो ये इनका जो कड़ी है, जन्म और मृत्यु के बीच की जो कड़ी, वो हमारे कर्म है। कर्म जन्म मृत्यु और जीवन की कड़ी के रूप में काम करता है। तो जो भी मरता है, आप कहां से शुरू करेंगे, पहले कौन मरा और कौन पैदा हुआ, मृत्यु पहले आता है या जन्म पहले आता है, इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों, ये अनंत है, ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि भी अनंत है, प्रलय भी अनंत है, संसार भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है, और ये हमेशा रहता है अनादि और अनंत। साइकिल, जब आप इसको साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं, फिर उसमें कोई ना पहले होता है ना बाद में होता है, ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट है, जो व्हील है, चक्का है। आप बता सकते हैं चक्का का कौन सा भाग पहले चलता है, कौन सा भाग बाद में चलता है? कुछ प्रश्न का उत्तर पहले और बाद के लिए होता ही नहीं है। जो भी साइक्लिक मोड में है उसमें ना कोई पहले होता है ना बाद में होता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है, हमारे लिए तो पैदा होना आरंभ है पर फिलोसॉफिकली रियलिटी में बिना मरे आप पैदा नहीं हो सकते हो और मर नहीं सकते हो जब तक आप पैदा ना हो। समझ लीजिए हम पैदा होने से ही लेकर चलते हैं, आप पैदा होते हैं, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं, मरने के बाद बात खत्म नहीं होती है, फिर पैदा होते हैं। तो इस तरह के साइकिल, जीवन का चक्र चलता रहता है। अब इसको समझने के लिए हमें दो चार चीजें समझने की जरूरत है, जिसे हम जीवन कहते हैं, लाइफ। ये कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये दो अलग अलग चीजों से बना हुआ चीज है। एक शरीर है जो मैटर से बना हुआ है, जब हम शरीर कहते हैं उसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ आ जाता है। और एक है आत्मा, जो चेतन है, बिल्कुल शरीर से अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी बनावट अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। आत्मा, आप आत्मा नहीं हो, ना आप शरीर हो। आत्मा होते केवल तो ना देख पाते, ना बोल पाते, ना सुन पाते, ना खा पाते। केवल शरीर होते तो जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है वो कुछ नहीं क्यों कर रहा है, उस तो मिस है। कौन सा चीज मिस है? जो मिस है वही उसके अंदर का प्राण था, प्राण लाता था। तो हमारा जो जीवन है वो दो चीजों से मिलके बना है, शरीर और आत्मा। दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर वाले हैं, पर दोनों के बिना आप और हम, लाइफ जिसको हम कहते हैं जीवन, वो नहीं हो सकता। तो भारतीय दर्शन शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में जीवन की परिभाषा है, शरीर और आत्मा मिले तो जीवन, और शरीर और आत्मा अलग हो जाए तो मृत्यु। जहां भी कॉम्बिनेशन है, कोई भी चीज अगर कॉम्बिनेशन से बना है, संयोग से बना है, तो वहां वियोग निश्चित है, वहां सेपरेशन निश्चित है। आप एक घर बनाते, हजारों चीजें लगता है, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, कंक्रीट है, सीमेंट है, बहुत सारी चीजें लगा, तो घर बहुत सारे चीजों का एक संयोग है, कॉम्बिनेशन है। तो संयोग का जो एक साइड इफेक्ट होता है वो क्या है, कि जहां भी संयोग होगा वहां वियोग होगा, जहां भी कॉम्बिनेशन है वहां सेपरेशन है। तो घर एक ना एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा। नष्ट होने का मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जन्म और मृत्यु क्या है? जन्म जब आत्मा स्थूल शरीर के साथ मिलता है, जन्म। मृत्यु स्थूल शरीर और आत्मा अलग हो जाते, क्यों होते? तो इसको समझने के लिए इस प्रक्रिया को समझेंगे। पहले समझेंगे आत्मा क्या है। कठोपनिषद का ये सुंदर श्लोक आत्मा को डिफाइन करता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद का 1:2:18 मंत्र है। ये आत्मा न मरती है न पैदा होती है, ये ज्ञानमय है, ना ये किसी से पैदा होता है ना इससे कोई पैदा होता है। ध्यान दीजिए शब्दों को, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। ना आत्मा किसी से पैदा होता है ना आत्मा से कोई पैदा होता है, ये अज है ना पैदा होने वाला, ये नित्य है कभी नष्ट ना होने वाला हमेशा रहने वाला, शाश्वत है ये एवरलास्टिंग है, पुराण हमेशा से ये बहुत पुराना होने पर भी नया है, पुरा सदपि नवमेति। ये मरता नहीं है पर जहां रहता है वो मरणशील है शरीर। दो चार चीजों को ध्यान दीजिएगा इसमें, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, मरता वही है जो पैदा होता है। अगर आपको अमर होने का शौक है एक ही रास्ता है, पैदा मत हो। तो जहां भी पैदा होने की संभावना है वहां मरने की संभावना है। आत्मा नित्य है, ना मरती है ना पैदा होती है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना आत्मा से कोई पैदा होता है, वो एब्सोल्यूट है, उससे कोई चीज, आत्मा किसी का भी मैटेरियल कॉज नहीं होता, आत्मा से कोई नहीं पैदा होता ना आत्मा किसी से पैदा होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना परमात्मा से आत्मा पैदा हुआ, परमात्मा का अंश है, नहीं, आत्मा इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, और उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। दुनिया में तीन चीजें नित्य है, परमात्मा प्रभु भगवान परमेश्वर जो समस्त संसार का स्वामी, आत्मा जो इंडिविजुअल है, परमात्मा एक है, ये इंडिविजुअल सोल अनलिमिटेड है, नंबर है पर अनलिमिटेड नंबर है, अनकाउंटेबल है, और ये प्रकृति। तो आत्मा से कोई पैदा नहीं होता और आत्मा किसी से पैदा नहीं होता, ये हमेशा रहता है, ना मरता है ना पैदा होता है। तो अगला श्लोक देखते हैं थोड़े आपको आत्मा के बारे में। तो आत्मा क्या हुआ, आत्मा कभी पैदा नहीं होता, आत्मा उतना ही नित्य है जितना परमात्मा नित्य है और प्रकृति नित्य है। प्रकृति क्या है, ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है उसकी जो प्राइमोडियल स्टेट है, जो ओरिजिन है, उसे प्रकृति कहते हैं, सत्व रज तमोगुणात्मिका। परमात्मा शरीर को, शरीर के अंगों को परमात्मा बनाता है, किससे बनाता है, परमात्मा कुंभार है, शरीर और ये दुनिया घड़ा है, तो इसकी जो प्राइमोडियल मैटर है, जो मैटेरियल काज है, वो प्रकृति है। तो परमात्मा प्रकृति के ढांचे को बदल करके अलग अलग शेप देता है, उसमें हमारा शरीर और शरीर के अंग है, पर इस शरीर और शरीर के अंगों का जो नियंत्रक है, जो इसको यूज करता है, वो आत्मा है। आत्मा इसका कंज्यूमर है, कुमार घड़ा बनाता है, आप इसको ले आते हो, आप यूज करते हो, आपकी मर्जी, आप इसको कैसे यूज करोगे। और आत्मा फ्री एजेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि अष्टाध्याय में लिखते कर्तृत्व का डेफिनेशन क्या है, बट इज द डेफिनेशन ऑफ डूअरशिप। अगर आप कहते हो कि मैं डूअर हूं, मैं करता हूं, तो डेफिनेशन क्या है, कहते हैं जिसमें स्वातंत्र्य हो, जिसमें इंडिपेंडेंसी हो, जिसमें फ्रीडम हो टू करने के लिए, जिसमें फ्रीडम हो, तो आत्मा एब्सोल्यूट फ्री है और आप फील कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला है नहीं है। परमात्मा की तरफ से कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मा समस्त फलों को भोगने का अधिकारी है। जो वो करता है जान के अनजान करके, नोइंगली अननोइंगली वो फलों को भोगता है। तो ये आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा और संसार के साथ क्या संबंध है, ये थोड़ा बहुत अब क्लियर हुआ। शरीर क्या है? शरीर मैटर से बना है और मैटर का स्वरूप होता है हमारे सांख्य सूत्र के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार ये नित्य है मैटर भी, पर चेंजेबल है, बदलता रहता है। कभी पत्थर के रूप में है तो कल कंकर के रूप में होगा, कल धूल के रूप में होगा, कल एटम्स के रूप में होगा, फिर कभी किसी दूसरे फॉर्म में होगा, पत्थर के रूप में होगा, बदलता रहता है। कभी लकड़ी है, कभी कुर्सी है, कभी टेबल है, कभी पाउडर है, कभी राख है, कभी एटम है, फिर दूसरे फॉर्म में। पर किसी भी मैटर अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोता, स्वरूप बदलता है, वो नित्य है, स्थूल रूप में बदलता रहता है। शरीर उसी मैटर से बना हुआ है। जिस पदार्थ से धूल बना है, मिट्टी बना है, सूरज बना है, चांद बना, पानी बना, जड़ तत्व बने, उसी पदार्थ से आपका शरीर बना, शरीर के अंदर के हर कंपोनेंट्स बने, इंक्लूडिंग आपकी आपका मन और बुद्धि, ये भी मैटेरियल होते हैं। अब ये क्लियर हुआ आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन और बुद्धि क्या है, तब जाकर के हम कंक्लूज, फिर आगे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आपको समझने में आसानी होगी। ईशोपनिषद का ये मंत्र है, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ यही मंत्र आता है, क्लिवे स्मर कृतम स्मर। क्या भाव है? वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, मृत्यु का वर्णन है, तुम तब तक सरवाइव करते हो जब तक तुम्हारे सांसें ये परम वायु में ना मिल जाए, एटमॉस्फेरिक एयर में जना ना मिल जाए, तुम्हारा एग्जिस्टेंस कब तक है? भस्मांतम, तुम्हारा शरीर जब आग में भस्म ना हो जाए। पर मत सोचना कि तुम्हारा शरीर जब जल जाए, तुम्हारे सांसें जब वायुमंडल में मिल जाए, तो तुम्हारा असलियत, तुम्हारे असली एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जो एग्जिस्टेंस खत्म हुआ वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना था आत्मा और शरीर के मिलावट से, वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तुम्हारे सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। पर याद रखो, क्रतु, क्रतु यहां मन के लिए कहा, मन, क्रतु का मतलब ज्ञानशील या कर्मशील, एनीथिंग विच एक्ट सर विच हैव दैट पोटेंशियल टू नो। हे मन, कर्मशील मन, याद रखो, अपने किए हुए को याद करो, क्योंकि शरीर के नष्ट होने के साथ सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। एक आत्मा भी है जो नित्य है, शरीर को छोड़ करके भाग जाती है दूसरे शरीर की खोज में, और कैसा शरीर मिलेगा वो डिपेंड करता है कि तुमने अभी तक क्या काम किया है। इसलिए बीच बीच में याद रखो, मंत्र कहना चाहता है कि हर वक्त याद, ये मंत्र आपको हर एक साल में नए ईयर के दिन, नए साल के दिन बोलना चाहिए, इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए माइंड में, क्या मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, याद करो, अच्छा किया या बुरा किया या बेकार के टाइम पास किया, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं का फल तो तुम्हें मिलेगा ना। कृतम स्मर, और ओम परमात्मा को भी याद करो, उसको याद किया कि नहीं किया। मृत्यु, इस मंत्र का भाव है, मृत्यु इज नॉट एंड ऑफ द एग्जिस्टेंस, मृत्यु तुम्हारे अस्तित्व का अंत नहीं है। तुम्हारी ये जो टेम्पररी पर्सनालिटी एक मैक्सिमम 100 साल के लिए बनाया गया था, उस टेम्पररी एग्जिस्टेंस का नष्ट होने का नाम है। और ये मृत्यु तो अगले एक नए शरीर की शुरुआत है, और इस तरह जीवन चलता रहता है। अच्छा, जब हम मरते हैं तो क्या होता है? शरीर नष्ट हो जाता है, आग में जल जाता है, पर आत्मा निकल जाती है। कहां निकल जाती है, कैसे निकल जाती है? आत्मा अकेले नहीं जाती है, आत्मा साथ में ले जाती है मन, और मन के अंदर जो भी हमारे पुराने किए हुए कर्मों की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने किया, जो हमने भोगा, जो हमने देखा, जिस तरह रिएक्ट किया, मन में क्या क्या सोचा, वाणी में क्या क्या बोला, शरीर के कर्मों में क्या क्या किया, इन सब की जो मेमोरी, पिछले बार हमने ये डिस्कस किया था, भूल गए तो उनको दोबारा देख लीजिएगा, जो जो किया था उन सब की जो मेमोरी सब कंसस में चला गया, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो कहां रहते हैं? इसी मन में ही रहते हैं। ये मन आत्मा का वाहन है, व्हीकल है। तो केवल मन नहीं जाता, और कौन जाता है? आपको स्लाइड के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मन अकेले नहीं जाता, मन के साथ ये आपकी इच्छाएं, आपकी मेमोरी, ईगो सब जाता है। सूक्ष्म शरीर, हमारे शास्त्रीय भाषा में उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर जाता है। उसमें 17 कंपोनेंट है, कोई 18 अहंकार को भी मानता है। मन, आपकी माइंड, आपकी विजडम, आपके मन के अंदर जितने सारे पुराने कर्म हैं, आपके किए हुए कर्म, उनका संचित स्वरूप, उनका जो आपने सेविंग अकाउंट में आपको बिना पूछे डाला है, आपको पूछा नहीं है, आपको पूछा होता तो आप सारे खराब को हटा के अच्छे ही रख देते, वो अपने आप डाला होता है। वो सब आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, आपके प्राण, सब सटल फॉर्म में निष्क्रिय होकर के इनएक्टिव मोड में आपके माइंड में पड़े रहते हैं जब हमारा मृत्यु होता है। और उन 17 तत्वों का जो एक डिजाइन स्ट्रक्चर बनता है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर आपके आत्मा को लेकर के चलता है अगले शरीर की खोज में। अगला शरीर कैसे मिलेगा? मन के अंदर पड़े हुए संस्कारों के एनालाइज करके। पिछली बार बात कर रहे थे ना चित्रगुप्त के, तो मैं कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, इंसान बनूंगा, अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा शरीर मिलेगा, किस तरह की टैलेंट होगी, किस तरह का आईक्यू होगा, किस तरह के नेचर होगा, वो उन्हीं सब पर बेस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका शरीर हो सकता है 50 साल का हो, 25 साल का हो, 5 साल का हो, पर आपके अंदर जो मन है उसमें 50,000 साल का मन होगा, 50 लाख साल का मन भी हो सकता है, 50 करोड़ों साल का भी मन हो सकता है। हर व्यक्ति के 3 तरह के आयु होते हैं। शारीरिक रूप से मान लीजिए आप 30 साल के हैं, आप अपने पिता माता से छोटे हैं, बड़ों से छोटे हैं, आप अपने छोटों से बड़े हैं, पर मन के रूप में कोई जरूरी नहीं कि आप अपने पिता से छोटे हो, क्या पता आपका आयु आपके पिता से ज्यादा हो, मानसिक आयु हो सकता है आपका मन 50 करोड़ साल पुराना हो और आपके पिताजी का मन 30 करोड़ साल पुराना हो। शरीर छूटता जाता है, ये मन कितने लाखों करोड़ों शरीरों को छोड़ता गया है, नए नए शरीर में चलता गया है, ये मन को लाखों शरीरों का एक्सपीरियंस है, बाघों का, बाघ का, शेर का, हाथी का, कुत्ते का, बिल्ली का, प्लांट्स के, इंसान के, अलग अलग इंसान के, पुरुष के, महिला के, लाखों करोड़ों एक्सपीरियंस लेकर के ये मन आता है। एक तीसरा आयु हमारा होता है आत्मा की आयु। आत्मा के लेवल पर हम सब बराबर हैं जी। मेरी आयु, मेरे पिता के आयु, मेरे दादा के आयु, मेरे बच्चों की, मेरे पोतों की, पड़पोतों की, सबकी आयु बराबर है, क्योंकि आत्मा नित्य है, ना मरता है ना पैदा होता है, हमेशा से है। मन की दृष्टि से पता नहीं किसका आयु कितना है, शरीर की दृष्टि से कम बहुत हो सकता है। ये मन है आपके और अगले जन्म के बीच में आत्मा की कड़ी बनता है। तो पुनर्जन्म कैसे काम करता है? जब हम मरते हैं, आत्मा उस सटल बड़ी सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर सारे इंप्रेशंस हैं, सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं, उसके साथ नए शरीर में जाता है। डिपेंड करता है नए शरीर मनुष्य का होगा या पशु पक्षी का होगा या प्लांट का होगा, वो डिपेंड करता है। उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हम अगले जन्म के लिए जाते हैं। महाभारत का ये बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहता है यथा धेनु सहस्रेशु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। महाभारत के का श्लोक कहता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी गाय को ढूंढ लेता है, हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो जाए, ये सारे गाय एक जैसे दिखते हैं, पर बछड़े को पता है कि मेरी गाय कौन सी है, बछड़े को पता है कि मेरी गाय कौन सी है। लाखों गायों में से वो अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसी तरह हमारा कर्म, इस संसार में करोड़ों 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 आत्माएं हैं, इन करोड़ों करोड़ों आत्माओं में भी हमारा पिछला कर्म हमारे आत्मा को ढूंढ ही लेता है, किसके साथ अगले जन्म में चिपक जाना है, कोई मिसमैनेज नहीं होता है। आपका कर्म, जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना, किसी का बैग मिस हो जाता है, किसी का बैग कोई और ले लेता है, मेडिकल में बच्चे कभी बदल जाते हैं, बैग बदल जाता है, यहां ऐसा कोई 0% चांस है। जिसका कर्म मरने के बाद उसी को मिलता है, किसी दूसरे के पास गलती से भी नहीं जाता है। फिर मरने के बाद हमारा किस तरह का जन्म मिलता है, ये अगला सवाल है, उस पर डिस्कस करेंगे। कठोपनिषद का ये मंत्र कहता है योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः हनुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। एक मिनट, सॉरी। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयान्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद का यह मंत्र कहता है लोग अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जाते हैं। कुछ लोग शरीर धारण करते हैं, गर्भ में जाकर के पैदा होते हैं जैसे मनुष्य पशु पक्षी के तरह, और कुछ लोग स्थाणु जन्म लेते हैं। स्थाणु मतलब अनमूवेबल, जिसमें मूवमेंट होने का चांस कम है, जो चलना फिरना नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा प्राणी है जो चलता फिरता नहीं है? पेड़ पौधे प्लांट्स का जन्म लेता है। अब अगला जो मुख्य और एक मुख्य प्रश्न है कि मरने के बाद कैसा जन्म हमें मिलता है। कहते हैं जो भी प्राणी है उस सब में आत्मा है। कौन प्राणी है? पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इंसान, सब जिसमें भी लाइफ है उसमें आत्मा है। तो तुम्हारे मरने के बाद कौन सा जन्म मिलेगा? तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो भी अप्रोप्रिएट हो। पर हमने तो सुना था, बहुत लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियों को योनियों के थ्रू होकर के मनुष्य जन्म मिलता है। ये झूठ है, कानों कान हमारे लोगों में एक बीमारी है, पढ़ते लिखते है नहीं, शास्त्र पता नहीं, कहीं से भी हमारे मोस्ट ऑफ हमारे लोगों का जो ज्ञान है वो इम्पोर्टेड होता है, वो बाहर से लाया हुआ ज्ञान होता है। 84 लाख तरह की योनियां, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली ये जैन दर्शनों के जैन साहित्य में ये 84 लाख योनियों का कंसेप्ट आया है, और हिंदुओं में कुछ पुराणों में, बहुत नए पुराणों में इसका उल्लेख है। पर वैदिक हिंदू ट्रेडिशन में 84 लाख योनियों को भोग करके ही मनुष्य जन्म मिलेगा, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। किसी भी योनि में हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म ले सकते हैं। अगर मेरा कर्म ऐसा है, अच्छा बुरा का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, 60-40, 70-30 कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 199 जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके हिसाब से हो सकता है मेरा अगला जन्म सांप का हो, फिर सांप के बाद हो सकता है मनुष्य भी हो सकता है पेड़ पौधा बनो, ये डिपेंड करता है हमारा कर्म कैसा है। इन्हीं में से किसी भी जन्म में जाएगा। कोई 84 लाख जन्म होकर अगर आप जाने लगेंगे फिर तो कर्मफल बेकार हो गया, ये वैदिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। और मजेदार बात है, हमारे शास्त्रों में कितने तरह की प्राणियां हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको क्लासिफाई किया और बताया, देखो ये 4 तरह के प्राणी होते हैं, इन चारों में से कोई भी जन्म मिलेगा। कौन से वो 4 तरह के प्राणी हैं? जाति, जाति का अर्थ ये मत सोच समझ में पड़ जाए कि ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, संस्कृत में जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म, बर्थ। ये कास्ट से उसका कोई लेन देन नहीं है, किसी भी शास्त्र में कास्ट का कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। और जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण है, वो जाति नहीं है। ये जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में हम जाति देखते हैं वो तो एक उसके एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। जाति का मतलब जन्म, क्लास ऑफ बर्थ। तो व्यक्ति का जाति या जन्म 4 तरह के प्राणियों में हो सकता है। कौन से वो प्राणी है? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी गर्भ में पलते हैं और गर्भ के द्वारा पैदा होते हैं। दूसरे तरह के प्राणी अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, बहुत सारे पक्षियां पक्षी हैं, मछली है, पानी में जो पैदा होने वाले जो पशु प्राणी हैं, सरीसृप, सांप, बिच्छू वगैरह, जो भी अंडे से पैदा होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी स्वेदज, जो गंदगी से पैदा होते हैं, चीजें सड़ जाने पर, गल जाने पर, गंदा होने पर जो पैदा होता है, यहां तक कि आपके शरीर में भी अगर आप 15-20 दिन महीनों तक ना नहाओ तो आपके शरीर में भी प्राणी पैदा हो जाते, कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया चीजें पैदा हो जाते हैं, और लोगों के बालों में भी प्राणी पैदा हो जाते हैं गंदगी से, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी है जो गंदगी से पैदा होते हैं वे स्वेदज है। चौथा क्या है? उद्भिज, जो बीज से पैदा होते हैं या कलमी से, कलम से पैदा होते हैं, प्लांट्स। और इनमें भी मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनमें भी सब डिविजन्स मिलता है हमारे शास्त्रों में। जैसे ये उद्भिज है, प्लांट्स वगैरह है, तो ये भी 4 तरह के होते हैं, वनस्पति, वृक्ष, लता, गुल्मा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जरायुजों के भी क्लासिफिकेशन है। तो मनुष्य 4 तरह के, तो ये 4 तरह के प्राणी संसार में होते हैं, और हम इनमें से कोई भी जन्म ले सकते हैं। खाली ले सकते हैं नहीं, पहले भी लेकर आए हुए हैं। ध्यान रखिए, जिसमें भी प्राण है उसमें आत्मा है। क्या पता हमारे कोई रिलेटिव इन्हीं में से कोई एक बन के पैदा हुआ हो, हो सकता है कल हम भी इन्हीं में से कोई एक थे, कल इन्हीं में से कोई एक होंगे कर्मों के अनुसार। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है अगर ये मनुष्य जन्म चुक गया ना तो बहुत कुछ चुक गया, पता नहीं कितने बुरे कर्म किया होगा, उनको भोगने के बाद जब कर्मों का कोई बैलेंस बनेगा मनुष्य लायक तभी आओगे। और यही मनुष्य जन्म होता है जहां आप सुधर सकते हो। ये जो चार तरह के हमने जन्मों की, चार तरह के प्राणियों की बात की, जितने भी प्राणी हैं इनको और एक तरह से हम दो तरह से बांटते हैं, एक भोग योनि एक कर्म योनि। मनुष्य को छोड़कर के सभी प्राणी, सभी पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी तक, उनको कहते हैं भोग योनि। मतलब वो सिर्फ उस शरीर में भोगने के लिए होते हैं, वो जो कर्म करते हैं वो काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनमें वो आजादी नहीं है, उनके अंदर वो विजडम डिस्क्रिमिनेटिव पावर नहीं है, क्या करें क्या ना करें ये शक्ति उनके पास नहीं है। वो तो इनबिल्ट नेचर जितना परमात्मा ने दिया है उतने में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ये खाएं ना खाएं, उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकते। इसीलिए तो अगर आपको मनुष्य के अलावा कोई जन्म मिलता है वो सिर्फ भोगने के लिए, जो बुरा कर्म है वो कम हो रहा होता है, भोग चुके होते हैं। जब बुरा कर्म कम हो जाता है अच्छे कर्म बने रहते हैं, एक बैलेंस बन जाता है, फिर आप मनुष्य बनते। अब मनुष्य जन्म ये कर्म और भोग दोनों योनि में आता है। मतलब मनुष्य जन्म में हम भोगते भी हैं अपने पुराने कर्मों का फल और नए कर्म भी करते रहते हैं, पुराने कर्म को रेक्टिफाई करने का भी हमारे पास पोटेंशियल है। क्यों? हमारे पास बुद्धि है। ये जो बुद्धि है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सारे दुनिया में सब प्राणियों से मनुष्य को अलग करता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी इसलिए आजादी भी दी, फ्रीडम, कुछ भी कर सकते हो, पर आजादी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फ्रीडम फ्री में नहीं आता है, आजकल जो शोर मचाते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ दैट, एब्सोल्यूट फ्रीडम, ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में। एब्सोल्यूट फ्रीडम, एवरी फ्रीडम कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अगर खुद का डिसीजन खुद लोगे तो डिसीजन का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो तुम्हें ही मिलना चाहिए, उसके लिए भी तैयार रहो। इसीलिए सब कर्मों का फल जो कुछ मनुष्य करता है उसका फल उसको मिलता है, पशुओं के कर्मों का फल काउंट नहीं होता। अब एक अगले टॉपिक पर आते हैं। वेदांत दर्शन में एक सूत्र आता है, बहुत सारे लोग अपने बुराइयों के लिए संसार में जो घटने वाली जो बुरी घटना है उसके लिए परमात्मा को दोष देते हैं, ये क्यों इतनी बुराइयां चल रही है, इतने लोग बुरे क्यों है, इतने लोग कष्ट क्यों सह रहे हैं, तो परमात्मा तो खराब है, भगवान खराब है। वेदांत दर्शन का जिसका मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का ये सूत्र है, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। ये ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय ये 2.1.34 सूत्र है। सूत्र कहता है, क्वेश्चनर प्रश्न पूछने वाला पूछता है, विरोधी पूछता है, वो ब्रह्म कैसा ब्रह्म है, वो भगवान कैसा भगवान है, वो तो इस दुनिया में इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी विषमताएं हैं और लोगों को कष्ट पैदा कर रखा है, कितने लोग कष्ट सह रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं और कितने कितने समस्याएं लोगों की जिंदगी में है, कितना अनइक्वल वर्ल्ड है, कोई इतना गरीब क्यों है, इतना धनी क्यों है, हॉस्पिटल में लोग इतने परेशान क्यों है, बहुत सारे परेशानियां है। इन भगवान कितना क्रूर होगा, अगर भगवान है तो कितना क्रूर होगा, कितना हिंसक होगा, कितना पार्शियल होगा। तो ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का ये सूत्र कहता है ईश्वर इसका दोषी नहीं है. देर आर नो इनइक्वलिटी और क्रुएलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ब्राह्मण परमात्मा. बिकॉज इनइक्वलिटी एंड क्रुएलिटी दे डिपेंड ऑन द कर्माज ऑफ द इंडिविजुअल सोल्स देमसेल्फ. ये जो वैषम्य है इनइक्वलिटी, और जो नैर्घृण्य है जो क्रुएलिटी है, ये दोनों सापेक्ष है. ये ईश्वर पर डिपेंड नहीं करते हैं. ईश्वर को कोई भांग खा करके बैठा नहीं कि रैंडमली किसी को कुछ भी दे दिया या उसका दिमाग खराब हो गया है, चलो 10-20 लोगों को तड़पाओ, 10 लोगों को खुश रखो. और मजेदार बात है, ज्यादातर रिलीजन में यही सिखाया जाता है कि तुम्हारे लाइफ में जो हो रहा है भगवान गुस्से में किया, अच्छा हो रहा है तो भगवान खुश हो गया, भगवान की पूजा करो तो सब ठीक हो जाएगा, शनि की पूजा करो तो ठीक हो जाएगा. ये वेदांत दर्शन का सूत्र कहता है भगवान का कोई रोल नहीं है तुम्हारे भाग्य में. तुम्हारा भाग्य तुम्हारा है. तुम्हारे लाइफ में जो भी अच्छाइयां बुराइयां है वो तुम्हारे कर्मों के कारण है, तुम्हारे सराउंडिंग के कारण है. तुम उसको अगर लगता है ये गलत है उसको रेक्टिफाई करो. अगर इस जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, इसको समझो, इसको ठीक करने की कोशिश तक करो. आगे भी तुम्हारे साथ अच्छा हो ऐसा लाइफस्टाइल जियो, ऐसा जीवन जियो. ध्यान रखिए, हमारा जीवन, इस जीवन में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, सुख या दुख, ये हमारे कर्मों का फल तो है ही. मरने के बाद भी हमारे साथ क्या होने वाला वो भी हमारे कर्मों से डिसाइडेड होंगे. ये पुनर्जन्म जब तक समझ में नहीं आएगा, ये पुनर्जन्म की सिद्ध व्यवस्था तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि संसार में जो इनइक्वलिटी है, फिर हम हमेशा परमात्मा को ब्लेम करते रहेंगे या नास्तिक होकर के घूमेंगे कि ये तो रैंडमली होता है. दोनों रंग है ना, ये रैंडमली होता है जैसा नास्तिक मानते हैं या जैसे कि रिलीजियस लोग मानते हैं, मूर्ख रिलीजियस लोग मानते हैं, इसे परमात्मा कराता है. हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये सब तुम्हारी अपनी कर्मों की व्यवस्था है. तुम्हारा जैसा भी जन्म मिला है तुम्हारे पुराने कर्मों के हिसाब से आगे भी वैसा ही मिलता रहेगा. तो ये कर्म और पुनर्जन्म की व्यवस्था का बीच के संबंध है. आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता हो इससे रिलेटेड, आप मुझे जरूर ईमेल के द्वारा या जिस भी माध्यम से आपके पास जो भी सोर्स है, आर्य समाज का ईमेल, मेरा ईमेल के द्वारा भेजिए. हम कोशिश करेंगे आगे के प्रवचन में या आगे के क्लास में इन चीजों का आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे. अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद. अब शांति पाठ करेंगे, उससे पहले